संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में अगली कथा श्री अम्बरीश जी की। वैवस्वत मनु हुए, मनु के पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग जी के पुत्र हुए हैं श्री अम्बरीश जी। नाभाग जी अपनी रानी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की, और एक दिन नाभाग जी और उनकी जो पत्नी है वो सोए हुए थे, भगवान की वाणी उन्हें सुनाई दी। भगवान ने कहा, अम्ब नाभाग की पत्नी को, उन्हें कहा कौन है, तो अवाणी ने कहा ईश यानी परमात्मा। तो वो खड़े हुए, दोनों पति पत्नी उठे, उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान ने वरदान किया कि तुम्हें मेरे अंश पुत्र रूप में प्राप्त होगा। तो इन्होंने नाम रखा जब पुत्र हुआ, क्योंकि भगवान ने बोला था अम ईश, तो नाम रखा अम्बरीश, तो इनका नाम हुआ अम्बरीश। अम्बरीश ऐसे राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, और भगवान के ऐसे भक्त थे कि अपना सर्वस्व भगवान पर लुटाए रखते थे। ये भगवान के धाम की यात्राएं करते थे, मतलब मन क्रम वचन से ये भगवान के ही थे। जो भी हमारी दसों इंद्रियां हैं, दसों इंद्रियों से इनका, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, इनका दस की दस इंद्रियों से जुड़ाव मन के साथ सिर्फ परमात्मा से था। जब राज्य के लिए इन्होंने, भगवान ने इनको उदासीन पाया, क्योंकि राज्य में इनका इतना ध्यान नहीं था राज करने में, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र इनके राज्य की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था कि भाई इनका तो पूरा ध्यान तो मेरे में है, अब राज्य में अगर कुछ हो जाए विपत्ति तो भगवान उसकी सार संभाल कर रहे थे, इतने ही भगवान में तन्मय थे। तो एक बार क्या हुआ कि मकर संक्रांति का दिन था और प्रयाग में दुर्वासा जी भी वहाँ पे थे, सब ऋषियों के सामने नारद जी अम्बरीश जी का गुणगान कर रहे थे कि धरती पे ऐसे भक्त हैं अम्बरीश जी कि जिनका क्या कहना, भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण है और भगवान उन्हें इतना प्यार करते हैं कि जैसे अम्बरीश जी भगवान को करते हैं, भगवान भी उन्हें इतना ही प्यार करते हैं। अब उनकी दुर्वासा जी से उनकी ये जो प्रसिद्धि थी भक्ति की, ये सहन ना हुई, उन्हें लगा कि हम इनका जो है, इनकी जो कितनी बड़ी भक्ति है, इसकी थोड़ा सा तो इसको देखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो दुर्वासा जी एक दिन चल दिए। इधर जिस समय दुर्वासा जी आए, इनका एकादशी का एक वर्ष का व्रत था, एक वर्ष पारण हो चुका था, एक प्रतिवर्ष एकादशी रखते हैं ना, तो द्वादशी का पारण का समय था। उसी समय इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया था, स्वयं पारण का समय हो गया था, तभी दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आई तो उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया, प्रभु आइए भोजन कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, हम जरा स्नान वगैरह करके आते हैं, तब तक आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा प्रतीक्षा करो, हम आते हैं। ठीक है महाराज, वो चले गए, लेकिन वो उन्हें बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी की निश्चित अवधि में ही पारण होता है, जो एकादशी करते हैं उनको पता है कि निश्चित अवधि होती है पारण की, अवधि का समय गुजरने वाला था, वो बीतने वाला था। तो इन्होंने ब्राह्मणों से और सबसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि दुर्वासा जी अगर नहीं आते हैं अवधि के समय तो मुझे तो पाप लग जाएगा, पारण अगर नहीं हुआ तो पाप लगेगा एकादशी का, तो क्या करें। तो उन्होंने सबने कहा और शास्त्र सम्मत से ये हुआ कि जल से व्रत पारण भी हो जाता है और नहीं भी होता है, दोनों स्थितियाँ हैं। तो आपको ब्राह्मण से पहले भोजन करने का पाप नहीं लगेगा जल पीकर, और इधर आपका पारण भी हो जाएगा, उस पाप से भी आप बच जाएंगे। तो इन्होंने वही किया, जो घड़ी भर शेष थी उसी में इन्होंने पारण कर लिया। जैसे इन्होंने पारण किया, कुछ समय के बाद ही दुर्वासा जी आए, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देख लिया कि पारण कर लिया व्रत का, तो क्रोधित हो गए कि दुष्ट, तू भक्त बोलता है अपने आप को कि ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन के लिए और खुद तूने पारण कर लिया है। वो इतने क्रोधित हुए, इतने आग बबूले हुए, सबने समझाया महाराज पूरी आप समझिए तो, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो बड़ा होता है जिसमें ज़्यादा बल होता है ना, तो वो सामने वाले को तुच्छ समझ करके उसकी बात सुनता ही नहीं है, ये हकीकत है, संसार में ऐसा होता है। दुर्वासा जी ने कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं रहा था अम्बरीश जी को। उन्होंने बोले मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तू बहुत बड़ा भक्त बनता है ना नारायण का, तू देखते हैं तू और तेरा नारायण क्या करता है। तो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, उससे कृत्या प्रकट करी और पटक दिया धरती पे, जाओ खत्म कर दें अम्बरीश को। अमरीश जी अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि वो नारायण समर्पित हैं अपने आप को। वास्तविकता जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, उसकी स्थिति वही होती है, वो निर्भय होता है, वो भगवान के आश्रित होता है। तो उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए और वो बस भगवान जैसी आपकी इच्छा प्रभु, कृत्या सामने से आ रही है मारने के लिए, और ये निर्भय खड़े हुए हैं कि जैसे होगा वही, जो राम रचि राखा, भगवान जो चाहते हैं वही होगा। खड़े जैसे ही कृत्या पास आई तो सुदर्शन एक्टिव हो गए उनके, तो जलाना शुरू कर, कृत्या को भस्म किया। उनको भस्म करते ही चक्र चले दुर्वासा की तरफ, दुर्वासा जलने लगे उनकी आग से, जो वो भागने लगे, वो भी अपने योग बल से तीव्र गति से वो भागे, वो सीधे भागे, भागते गए। जब उन्हें कहीं सहारा न मिला, ये बोलते हैं कि वो पर्वत समुद्र गुफाएं कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में भागते हुए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि सुदर्शन पीछे लगा, बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर लिए, भगवान का चक्र है भाई, इनसे कुछ नहीं बता, कोई भी नहीं बचा सकता, हम तो भाई पास भी नहीं आएंगे, तो देख लो अपना, तो ऐसे उल्टे काम क्यों करेगा, तो पीछे तो पड़ेंगे ही सुदर्शन। तो वो चल दिए। अब उन्हें लगा कि महादेव बचा लेंगे, तो कैलाश पे महादेव के पास गए, वहाँ स्तुति करी योग बल से, वो इतनी तीव्र गति से वो भी चल रहे थे। महादेव के पास जाके उन्होंने स्तुति करी, महाराज बचा लो, हम जल रहे हैं, आग से जल रहे हैं सुदर्शन की। बोले भाई ये भगवान का अस्त्र है, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे, तो आप जिनका अस्त्र है उन्हीं के पास जाइए, भगवान नारायण ही आपको बचा सकते हैं और कोई नहीं। योग बल से भगवान नारायण बैकुंठ गए, वहाँ भगवान से प्रार्थना करी, भगवान के सामने कि भगवान बचा लो, आपका अस्त्र है नारायण। वो कहने लगे अरे भाई हम तो भगवान, हम तो हमारा हम पे बिल्कुल अधिकार नहीं है, हम तो अपने ऐसे भक्तों के वश में हैं जो सर्वस्व हम पे लुटा चुके हैं, हमारा हृदय उन्हीं के वश में है, तो हम अपना स्वतंत्र रह करके हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम आपको नहीं बचा सकते। महाराज क्या करें, आप ही नहीं बचा सकते तो कौन बचाए। बोला भाई उन्हीं की शरण में जाओ जिनका अपराध किया है आपने, अगर वो दयालु हुए, शायद भक्त दयालु होते हैं, तुम्हें माफ़ कर दें, वो तुम्हें बचा लें। तो अब ये घूम फिर के उन्हीं के पास आए, और इनको जलता हुआ देखकर दुर्वासा ने जैसे ही अम्बरीश की तरफ हाथ जोड़े तो समझ गए कि ये सुदर्शन से। तो राजा अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना करी कि हे सुदर्शन आप शांत होइए, अगर मैंने अपने तन मन धन से भगवान की सेवा करी हो, मैं सर्वस्व अपना भगवान नारायण को मानता हूँ, और दुर्वासा जी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष ना हो, तो आप शांत हो जाइए। तो भगवान सुदर्शन शांत हुए, उनकी जलन खत्म हुई, और उन्होंने अम्बरीश जी का प्रभाव देखा कि वास्तव में भाई भक्त का प्रभाव, हम तपस्वी हैं, कितनी बड़ी तपस्या है, घोर सिद्धियां प्राप्त हैं, घोर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त हैं, लेकिन भाई भक्त के सामने तो, क्योंकि भक्त के वश में भगवान होता है और भगवान का ही सब कुछ होता है, उन्होंने प्रणाम किया और वो मान गए कि भाई भक्त के सामने कभी भी, मतलब कितने भी बड़ा तपस्वी हो, उसको भी भाई दूर से ही प्रणाम करके चलना चाहिए। ये यहाँ भक्त की महिमा भगवान ने प्रकट की, अम्बरीश जी की ऐसी लीला करी। तो अम्बरीश जी के बारे में एक और कथा आती है कि अम्बरीश जी का एक बार पूरी धरती पर, उस वक्त अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चाएं तो बहुत थी, तो अम्बरीश जी के बारे में एक राजकन्या थी, राजकुमारी, उन्होंने सुना तो उनके मन में अम्बरीश जी से ही ब्याह करने की, शादी करने की, उनको वरण करने की अभिलाषा प्रकट हुई, और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं वरण करूंगी तो अम्बरीश जी को, नहीं तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। उनके पिताजी ने ब्राह्मण भेजा अम्बरीश जी के यहाँ कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरी पुत्री है, वो आपसे विवाह करना चाहती है। इन्होंने मना कर दिया, भाई हम तो इन सब चीज़ों से दूर हैं, हमारी तो पहले ही स्त्रियाँ बहुत सारी हैं, तो हम विवाह नहीं चाहते। मना करके इन्होंने ब्राह्मण के हाथ एक पत्र भेज दिया, हमें विवाह नहीं करना है। उधर जब उसको पता चला कि अम्बरीश जी विवाह नहीं करना चाहते, तो उसने लिखा, पत्र भिजवाया दोबारा कि मैं, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, मैं अपना शरीर ही त्याग दूंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके कारण अपना आत्मदाह करे? अगर आपको ये स्वीकार है तो ठीक है, आप मत कीजिए विवाह, ये पाप आपको लगेगा। वो गया ब्राह्मण लेके, फिर अम्बरीश जी के पास आया, अम्बरीश जी भी संकट में पड़ गए, ये क्या। फिर अम्बरीश जी ने लिखा कि ठीक है हम विवाह कर लेंगे, लेकिन शर्तें होंगी हमारे विवाह में, हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे, आप हमें नहीं देखेंगे, आप हमें नहीं देखेंगे, है ना, हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे, आप हमसे नहीं करेंगी, आप हमारे राजमहल में हमारी विवाहिता बनके इस शर्त पे आने को तैयार हैं तो आप आइए साधना कीजिए, हम भी साधना करते हैं, अन्यथा नहीं, फिर आपको जो करना कर लीजिए। उन्होंने ये पत्र लिख के भेज दिया। वो तो प्रसन्न हो गई सुन करके कि उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। भले ही वो बोले कि मैं तो आपकी सिर्फ आपका नाम का सिंदूर माथे में डाल के, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके दर्शन ही करूँ, नित्य आपके चरणों में प्रणाम करूँ या आपका अंग स्पर्श करूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं भी साधना ही करूँगी। इधर अमरीश जी ने अपनी तलवार भेज दी कि भाई तलवार के साथ ही फेरे लेके आ जाओ। तो उसने भी सहर्ष स्वीकार किया और वो तलवार के साथ फेरे लेके आ गई। राजमहल में आई तो राजमहल में आने के बाद उसने देखा कि अमरीश जी का महल अलग है, सब रानियों के राजमहल अलग हैं और अमरीश जी किसी रानी के पास नहीं जाते हैं। अच्छा, अमरीश जी सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपना भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा सेवा सारे कार्य में उसमें रहते हैं। सुबह से शाम तक उनकी सेवाएं चलती रहती हैं, थोड़ा सा समय वो राजपाट के लिए निकालते हैं। तो ये सब देख करके उस रानी ने देख लिया कि ये कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ये अपने मंदिर में जाते हैं और कितने बजे ये सेवा करते हैं। सारा उनका अपनी दासी से सारा ब्यौरा ले लिया। अब सुबह ही ये क्या करने लगी रानी उठ के, जब पहले देखती थी उठ के कि ये किस समय जाते हैं और भगवान की क्या क्या सेवा करते हैं। कई दिन ही उन्होंने देखा भगवान की कैसे सेवा करते हैं। अब क्या हुआ, उनसे भी ये पहले 2 घंटे उठ करके जो भगवान की सेवा अमरीश जी करते हैं वो सेवा करके ही भगवान की, और जब अमरीश जी के आने का समय हो ये छिप जाया करती थी। फिर अमरीश जी जाते थे ये देखती थी, तो ये पूरा आनंद सेवा का लेने लगी। अब अमरीश जी को लगा कि हमारी तो चोरी हो रही है सेवा की, कोई हमारी सेवा चुरा रहा है, कौन करता है ये। एक दिन अमरीश जी सोई नहीं, ये पूरी रात जागृत रहे और इन्होंने देखा कौन करता है। इन्होंने देख लिया छोटी रानी है, पता किया कि ये छोटी रानी है, ये सारी सेवा कर रही है। तो इन्होंने उसको इधर खड़ा किया सामने, खुद देखा नहीं उसकी तरफ, और अपने दासों को बुलाया और पूछा कि इनसे पूछो ये ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा कि आप हमारे पति हैं, हम चाहते हैं कि हम भी ठाकुर सेवा करना चाहते हैं, तो हमें भी। तो बोले ठीक है, आपको अपने ठाकुर सेवा मिल जाएगी, हम आपको दूसरे ठाकुर विग्रह दे देंगे, आप उनकी सेवा कीजिए, लेकिन हमारी सेवा मत छीनिए। ठीक है महाराज। तो उन्होंने छोटी रानी के लिए अलग मंदिर का अपना अलग से निर्माण करवा दिया और उसमें ठाकुर जी की स्थापना करवा दी। ठाकुर जी की रोजाना सेवा करने लगी और वो भी उसी तल्लीनता से सेवा करने लगी। सेवा करने लगी तो इधर क्या हुआ कि वो सेवा में भगवान के ऐसे तन्मय होती थी कि वो ऐसा गान करती थी सेवा करते करते भगवान का कि वो पूरा लीन हो जाती थी, आंखों से अश्रुधार बहने लगती थी उसकी। अमरीश जी ने एक दो बार सुना तो वो ठहर जाते थे सुनके कि ये कौन गाता है। पता कराया कि मंदिर में छोटी रानी गाती है। तो इनके अंदर ये जब अपनी सेवा और पूजा सारी हो जाती थी वो तब भी लगी रहती थी। इनके मन में आया कि भाई इतनी भक्ता है भगवान की और इतनी करुण पुकार है भगवान के गान में, तो क्यों ना इनके दर्शन करने चाहिए। तो अब इनके मन में आया कि इनके दर्शन करने चाहिए। तो ये कैसे इनके दर्शन करते हैं ये अगली स्टोरी में हम बताते हैं अमरीश जी के चरित्र में, और अमरीश जी के पूर्व जन्म का चरित्र भी हम अगली स्टोरी में कहेंगे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।